أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها اللهم صل على محمد وآل محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا سلسلہ درس جو مہدویت کے عنوان سے ہے مسلسل ہم اس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مہدویت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی خصوصاً اس زمانے میں کہ جب دنیا ایک بہت بڑے فتنے اور آزمائش سے دوچار ہوئی ہے کرونا وائرس سے کہ جب دنیا کے لوگوں کی امیدیں منقطع ہو رہی ہیں ظاہری اسباب و وسائل سے تو لوگ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ نجات دہندہ حقیقی معنوں میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کوئی قوم کسی بھی نام سے پکارے لیکن اللہ نے جسے نجات دہندہ قرار دیا ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو فاطمہ کا لال ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہے اور ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے آئے گا عزیزان محترم ہماری یہ گفتگو جو مختلف عناوین کے تحت جاری تھی آج ہم جس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ امام اگر حاضر ہو اگر اس کا ظاہری وجود ہمارے سامنے ہو تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں لیکن اگر امام پردہ غیب میں چلا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس سے کیسے فیض اٹھایا جا سکتا ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے مکاتب فکر عالم اسلام کے وہ امام غائب کے قائل نہیں ہیں اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پردہ غیب میں ہی جانا تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ظہور کے وقت اس سے فرض کر لیجئے 50 سال پہلے 40 سال پہلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو جاتی اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام 30, 35, 40, 50 سال کے بعد قیام کرتے تو اتنا طولانی غیبت کی وجہ کیا ہے تو یہاں پر میں نے جو اپنے درس کے آغاز میں سرنامہ کلام جس حدیث کو قرار دیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا کہ اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہو تو زمین پھٹ جائے اور اپنے رہنے والوں کو نگل جائے یعنی آسمان تہو بالا ہو جائے گا زمین پارا پارا ہو جائے گی یہ کائنات تہو بالا ہو جائے گی اگر زمانے کا امام نہ ہو امام کا وجود اتنا ضروری یہی مکتب حق تشیع کا عقیدہ ہے دیگر مکاتب فکر جو ہمارے دیگر بھائی ہیں مسلمان وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے لیکن شیعہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کوئی زمینی منصب نہیں ہے بلکہ آسمانی منصب ہے جس طرح سے نبوت آسمانی منصب ہے اسی طرح سے امامت بھی آسمانی منصب ہے جیسے کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا اسی طرح سے کوئی نبی کا جانشین اور وصی بھی نہیں بنا سکتا لہذا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آدم سے لے کر اور ما قبل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے بھی اپنے نبی کے جانشین کو معین کیا ہو حتیٰ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ نبی اپنے جانشین کا انتخاب خود کرے کیوں اس لیے کہ جانشینی کا عہدہ بھی نبوت کی طرح ہے جس طرح سے نبوت کا عہدہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے किसी के इख्तियार में नहीं दिया। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, इख्तियार रखता हो कि कहे जी मैं अपने इख्तियार से अपने आप को नबी बनाता हूं या फला शख्स को नबी बनाता हूं। तो जिस तरह से वो अपने आप को या किसी और को नबी नहीं बना सकता, उसी तरह से एक नबी अपने आप अपने मर्जी से न किसी को वसी बना सकता है और न किसी और की मर्जी से अपना वसी बना सकता है। ये मर्जी अल्लाह सुभान व तआला ने अपने पास रखी है। लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान मजीद में यही कहा नबी की जुबानी कि या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दे उसको, यानी अली की विलायत के हुक्म को पहुंचा दे जिसका तुझे हुक्म दिया गया। यह नबी अली की विलायत का ऐलान तेरी तरफ से नहीं है बल्कि मेरी तरफ से है। लिहाजा ये उहदा इमामत, यह उहदा विलायत, ये हुज्जत खुदा होना, ये उहदा खुदा है, उहदा इंसान नहीं है। बस इमामत एक अमरे गैबी है, इमामत एक अमरे आसमानी है, अमरे इलाही है, ये इंसानों के बस की बात नहीं, अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। बस मकतब तशय्यो के अंदर इमाम फकत एक हुक्मरान नहीं होता कि जो हुकूमत के नज्म व नस्क को संभालता है, बल्कि इमाम कबल इसके के हुक्मरानी करे, जाहिरी तौर पर ममलिकत की हुक्मरानी करे, वो उससे पहले एक हादी होता है, वो जानशीन नबी होता है, वो हस्ती होता है कि जिसके वसीले से अल्लाह सुबहानहु व तआला कायनात के निजाम को चलाता है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर हुज्जत खुदा ना हो तो कायनात ना हो। कायनात के चलाने का वसीला अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इमाम जमान को करार दिया है, हुज्जत खुदा को करार दिया है। हुज्जत खुदा है कि जिसके वसीले से अल्लाह सुबहानहु व तआला कायनात के निजाम को चलाता है। यही वजह है कि ज़ियारत जामिया के अंदर जो एक मोतबर तरीन हमारी ज़ियारत है, अल्लाह ने आपके वसीले से कायनात को शुरू किया और अल्लाह सुबहानहु व तआला आपके ही वसीले से इस कायनात का इख्तिताम करेगा। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला आपके वसीले से बारिश को बरसाता है। वबिकुम युमसिकुस समा, और अगर आसमान अपनी जगह पर कायम है, शामियाना आसमान का अगर कायम है, तो ऐ इमाम ऐ हुज्जत खुदा आपके वसीले से है। अंतका वाल अर्ज इल्ला बेजने, और यह आसमान, अगर आसमान ऊपर से नीचे नहीं आता, ज़मीन पर नहीं आता, तो ये इमाम की वजह से है, अल्लाह के इज़्ज़न से। तो अजीज साथियों, इमामत का मफहूम बहुत बुलंद है, इंसान की पहुंच उस तक मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नबी का जानशीन है, मासूम का जानशीन है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का खलीफा है। ज़मीन उसके बगैर बाकी नहीं रह सकती। लिहाजा वो बुलंदतरीन मकाम जो कायनात में अल्लाह सुबहानहु ताला किसी इंसान को नसीब करता है, तो वो नबूवत के बाद इमामत है। लिहाजा नबी शरीयत लेकर आता है तो उसका मुहाफिज इमाम हुआ करता है। और इमाम से इस्तेफादे के हवाले से जो रिवायात के अंदर मिलता है, लोग पूछते हैं कि भाई इमाम या गायब का फ़ायदा क्या है? तो खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा कि अगर आपका बेटा महदी गायब हो जाएगा तो उससे कैसे इस्तिफादा करेगी उम्मत, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने, जब किसी ने इमाम से सवाल किया खत लिखकर गैबत सुग़रा में, तो इमाम ने उसका जवाब इस तरह से दिया कि याद रखो जिस तरह से सूरज बादलों की ओट में चला जाए तो वो कायनात को अपना फैस पहुंचाता रहता है, उसी तरह से अगर मैं पर्दा गैब में हूं तब भी ये कायनात मेरे फैस से फैजियाब होती रहेगी, मेरी बरकतों से अल्लाह सुबहानहु व ताला उन्हें मेरी बरकतें पहुंचाता रहेगा। बस इमामत वो मकाम है कि जिसके वसीले से अल्लाह सुबहान व तआला तमाम कायनात को फैज़ पहुंचाता है। हम देखते हैं कि सूरज जो है बादलों की ओट में चला जाता है, लेकिन क्या कायनात को सूरज का फैज़ नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता है। सूरज की शुआएं कुछ ज़ाहरी होती हैं और कुछ गैर ज़ाहरी होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, जो कुछ हैं जो आँखों से नज़र आती हैं और कुछ हैं जो आँखों से नज़र नहीं आती। लिहाजा अगर बादलों की ओट में भी सूरज चला जाए तब भी वो शुआएं अपना काम करती रहती हैं। कायनात का अगर वजूद बाकी है, जानदारों का अगर वजूद बाकी है, तो वो इसी सूरज की वजह से। सूरज निजाम शमसी का महवर है। जिस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है इमाम की, कि इमाम कौन है? सूरज की मानिंद है। चाहे वो पर्दा गैब में चला जाए, चाहे वो बादलों की ओट में चला जाए, लेकिन इमाम क्या का वजूद जो है वो सूरज की मानिंद है। सूरज जिस तरह से निजाम शमसी का मरकज व महवर है, इसी तरह से इमाम पूरी कायनात का मरकज व महवर है। उसी के गिर्द पूरी कायनात अल्लाह के इज़्ज़न से घूमती है। अल्लाह के अल्लाह इमाम के वसीले से सारी कायनात के निज़ाम को चलाता है। लिहाजा निज़ाम शमसी का महवर सूरज होने की वजह से इमामत को मरकजियत की हैसियत हासिल है। जब ये मिसाल दी गई है तो वो इसी उन्वान से दी गई है। और इसी तरह से दुआए अदीला में मफातिहुल जिनान के अंदर ये दुआ मौजूद है, बे बकाई ही बकियत दुनिया व बे युम नहीं रुज़िक़ल वरा व बे वजूद ही तबततिल अर्ध व समा। इमाम वो हस्ती है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया को बाकी रखा हुआ है, यानी इमाम वसीला है दुनिया की बका का। अल्लाह के इज़्ज़न से अल्लाह ने यह निज़ाम बनाया, वह बेयुम नहीं रुज़िक़ल वरा, और मखलूक़ात को खल्क़े खुदा को जो रिस्क पहुँचता है वह इमाम के वसीले से पहुँचता है, और उसके वसीले से आसमान और ज़मीन जो हैं वो बाकी हैं। अजीज साथियों, इमामत चाहे हाजिर हो चाहे पर्दे गैब में हो, लेकिन इमाम के फैज से कोई भी महरूम नहीं है। हत्ता इमाम का मुखालिफ क्यों ना हो, इमाम का दुश्मन क्यों ना हो, इमाम के फैज से वो भी फैज़याब हो रहा है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम अगरचे के पर्दे गैब में हैं, लेकिन उसके बावजूद इमाम पर्दे गैब में रहकर तमाम हालात पर निगाह रखते हैं, तमाम आलम इस्लाम के उमूर में दखील हैं, तमाम इंसानों के उमूर में दखील हैं। लिहाजा 1400 साल से जो आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों को अगर कोई रद्द करता है, उनको कामयाब नहीं होने देता, तो उसमें इमाम ज़मान और हुज्जत खुदा का एक क्लीदी किरदार है। अगरचे कि हमें नज़र नहीं आता, अगरचे कि हम उसे नहीं समझ सकते, लिहाजा इमाम वो हस्ती हैं कि जो मुश्किल तरीन हालात में इमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के अपने पैरोकारों के मुश्किल तरीन हालात में इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदद फरमाते हैं। इसीलिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह को जो नामा लिखा था इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल के जवाब में, तो इरशाद फरमाया था कि इन्ना गैर मुहमिलीना लिमुराआतकुम वला गाइबीना लिज़िक्रकुम वलौला ज़ालिका लनज़ला बिकुमुल बलाउ औ इस्तलमकुम अलआदा। फरमाया कि हमने हरगिज़ तुमको तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा है। कोई ये ना समझे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम बस पर्दा गैब में, तो उनका उम्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं, आलम इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, आलम इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं कि दुनिया में क्या गुजर रही है। नहीं, हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा है और हम हरगिज़ तुम्हें नहीं भूलें, और हमेशा हमारी वजह से तुम्हारे ऊपर से बलाएँ दूर होती हैं, और दुश्मन अगर हमारी نظر عنایت تمہارے اوپر نہ ہوتی، ہمارا سایہ تمہارے اوپر نہ ہوتا تو دشمن تمہیں نابود کر دیتا. لہذا امامت عزیزان محترم وہ مقام ہے کہ جسے عام انسان کے لیے سمجھنا ناممکن ہے. معصوم کا مقام یا اللہ جانتا ہے، یا اس کا رسول جانتا ہے، یا خود معصوم جانتا ہے. لہذا آج کے زمانے میں ہم جو جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے پورا جہاں اس وقت معمور ہے، لوگ نجات دہندہ کے منتظر ہیں. میں انشاءاللہ اس کے فوائد جو غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، ایک امام کے فوائد، چند فوائد میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.